यशाया अध्याय 49। अध्याय 49 में यीशु मसीह के आगमन की आकर्षक भविष्यवाणी है, विशेष करके पहले 7 पदों में परमेश्वर उस मुक्तिदाता के विषय में कह रहा है जिसे वो भेजने वाला है। यशाया अध्याय 49 पद 1 और 2। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। यदि हम मसीह के आगमन की गरिमामय भविष्यवाणी को भजन संहिता 22 के पद 9 में देखें तो वहां लिखा है, भजन संहिता 22 9-10 पद, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। उसी का समतुल्य पद यहां है, यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। प्रकाशित वाक्य में ये कहा जा चुका है कि जो वचन उसके मुंह से निकलता था वो तेज दो धारी तलवार का सा था। अपने हाथ के आड़ में मुझको छिपा रख उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। यशाया अध्याय 49 पद 3, और मुझसे कहा, तू मेरा इसराइल है। इसमें इसराइल का वास्तविक नाम व्यक्त किया गया है, अर्थात मसीह यीशु, जो ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में था। यशाया अध्याय 49 पद 3 और 4, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया। यूहन्ना अध्याय 1 पद 11, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे तुच्छ जाना गया और उसे त्याग दिया गया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया। यशाया अध्याय 49 पद 4, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। उन्होंने उसका त्याग किया, उन्होंने उसे तुच्छ जाना, उनके लिए उसका आना व्यर्थ ही रहा था। यशाया अध्याय 49 पद 5, और अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर ले आऊं। मसीह यीशु के आगमन का उद्देश्य था कि याकूब को परमेश्वर पिता की ओर फेर ले आए और इसराइल के बचाए हुओं का पुनरुद्धार करे। मैं तुझे ये भी दूंगा, मैं बीच में कूद पड़ा, क्या कहा प्रभु? यशाया अध्याय 49 पद 5 और 6, अर्थात इसराइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है, तो याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इसराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। यहूदियों ने मसीह यीशु का परित्याग किया, वो अन्य जातियों के लिए ज्योति बन गया और मसीह का समाचार हम लोगों तक पहुंचा। हम परमेश्वर से और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से तो बहुत ही दूर थे, परंतु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के निकट लाए गए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराने के लिए धन्यवाद हो। यशाया अध्याय 49 पद 7, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, इसराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यों कहता है कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इसराइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का अन्य जातियों में काम है। प्रभु मसीह यीशु के सुसमाचार के अन्य जातियों में प्रवेश के कारण राजा और हाकिम प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हैं, परंतु परमेश्वर इस्राएल वंशियों को सुरक्षित रखेगा। यशाया अध्याय 49 पद 8 से लेकर 10 तक, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कहे, बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में हैं, उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ, वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टिलों पर भी उनको चराई मिलेगी, वे भूखे और प्यासे न होंगे, ना लहू और ना धाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगवा होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। ये पद मन में प्रकाशित वाक्य को उभारता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 16, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। यशाया अध्याय 49 पद 11 और 12, और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे, देखो ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे, ये पूर्वी क्षेत्र है। यशाया 49 पद 13 और 14, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। वो उनको फिर से लौटा लाने के सत्य के विषय में कह रहा है। वो उन्हें उत्तर से पश्चिम से और पूर्व से लाकर एकत्र करेगा, तब भी वे कहेंगे, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। यदि आप वहां आज जाएं, तो अधिकांश यहूदी कहेंगे, विनाश के समय यहोवा कहां था, यहोवा ने हमें त्याग दिया है। वे आज भी कहते हैं कि यहोवा ने उन्हें त्याग दिया है। यहोवा कहता है, यशाया अध्याय 49 पद 15, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करें? हां, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। वे तो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि उसने उन्हें छोड़ दिया है, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध मुहे बच्चे को भूल जाए? आपको याद होगा कि भजन संहिता 137 बाबुल की बंदवाई का भजन है। भजन संहिता 137 पद 1-4। बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं? कुछ प्राचीन रबियों का कहना है कि आगे के दो पद इस विलाप के लिए परमेश्वर का उत्तर है। यही तो परमेश्वर की घोषणा थी, भजन संहिता 137 पद 5-6। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दैना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। कुछ प्राचीन रबियों का कहना है कि जब इसराइलियों ने बाबुल में कहा था परमेश्वर उन्हें भूल चुका है, तब परमेश्वर ने उन्हें ये उत्तर दिया, निश्चय ही परमेश्वर कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे। देखो, ये माता अपने बच्चे को भूल गई, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। यशाया अध्याय 49 पद 16 से लेकर 21 तक। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं, और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तो निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेंगी, तो दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं, और तेरे जो देश खंडर ही खंडर है, उनमें अब निवासी न समाएंगे, और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझ से लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे कि ये स्थान हमारे लिए सकेत है, हमें और स्थान दे कि हम उसमें रहें। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में और यहां वहां मैं घूमती रही, इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहां थे? परमेश्वर उनको अपने देश लौट जाने के बारे में और भूमि की कमी और सीमाओं के विस्तार के बारे में कह रहा है। इसराइल का पुनर्गठन और पुनरुद्धार आज एक प्रशंसनीय काम रहा है, और यहोवा के उद्देश्यों की वहां पूर्ति होगी ही। ये अत्यधिक रोचक बात है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं की वहां पूर्ति की है। परमेश्वर उन्हें लौटा लाया है, वे वहां वास कर रहे हैं, परंतु वे अपनी सीमाओं को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। उनका कहना है, हमारे पास जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा है। आप स्वयं ही यदि देखें तो वो बहुत छोटा सा क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि आप इसराइल के एक छोर से दूसरे छोर तक 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, आपको 6 घंटे लगेंगे। इससे ही आपको इसराइल देश के क्षेत्रफल का ज्ञान हो जाएगा। इसराइल का इतिहास 5,800 वर्ष पुराना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मध्य पूर्वी एशिया में एक नए दृश्य का उदय देख रहे हैं। मैंने कुछ बाइबल ज्ञाताओं से सुना और कुछ विश्लेषणकर्ताओं से संभावना सुनी। मैंने कुछ इसराइलियों से भी ऐसी संभावना सुनी कि आने वाले समय में मध्य पूर्वी एशिया का युद्ध हुआ तो इसराइल की योजना में वो अंतिम युद्ध होगा, क्योंकि इसराइल का ये संकल्प है कि वो अपने समस्त विरोधियों को सदा के लिए समाप्त कर देगा, कि उनके विरुद्ध खड़ा होने वाला कोई ना हो। वे अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने का संकल्प किए हुए हैं। सारा अरब संसार जो उनको दुख दिए हुए हैं, वे उसका सर्वनाश करने की ठान चुके हैं। उनकी चतुर युक्ति ये है कि सऊदी अरब पर अधिकार करके तेल की कीमतों को आधा कर दे, तब संसार में कौन उसका विरोध करेगा। ये बड़ी बुद्धिमानी की बात है। आज मुद्रास्फीति और तीसरे संसार पर आने वाली भूखमरी का प्रमुख कारण तेल की बढ़ती कीमतों का परिणाम ही है। मुद्रास्फीति, अर्थशास्त्र की समस्याएं सब तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण है। सब समस्याओं की जड़ यही है। इसके परिणाम स्वरूप उसके गौण उत्पादन जैसे रासायनिक उर्वरक जो फसलों में काम आते हैं, उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई है कि खाद सामग्री महंगी हो गई। संपूर्ण मुद्रास्फीति को तेल की बढ़ती कीमतों पर आधारित किया जा सकता है। यही एक कारण है कि तीसरे संसार में करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने हेतु विश्व अर्थव्यवस्था में कोई विकल्प नहीं है। ये लोग जो लीबिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि स्थानों में बैठे हैं, उन्हें चिंता नहीं है कि उन्होंने संसार पर कैसा विनाश ढाया है। जब इसराइल वहां प्रवेश करके तेल की कीमतों को आधा कर देगा, तब संपूर्ण विश्व उन्हें महान हीरो मानेगा, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। पेट्रोल की कीमत गिर जाएगी, कच्चे माल की कीमत गिर जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि आज सब कुछ तेल पर निर्भर है। अतः ये एक बुद्धिमानी की योजना है और कौन इसका विरोध करेगा। यहां परमेश्वर कहता है कि वे कहेंगे हमें अपनी सीमाओं का विस्तार करना है, यहां स्थान पर्याप्त नहीं है, नागरिकों के लिए भूमि बहुत कम हो जाएगी। यशाया 49 पद 22। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि वो उनके उत्पीड़कों को दंड देगा। यशाया अध्याय 49 पद 22 और 23। देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूली चाटेंगे। तब तो ये जान लेगा कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाढ़ जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। इसराइल के भविष्य की महिमा का दिन जब पृथ्वी के राजा प्रति वर्ष आकर श्रद्धा अर्पित करेंगे। यशाया 49 पद 24 और 25। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हां, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे लड़के बालों का मैं उद्धार करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, वो उनसे युद्ध करेगा जो इसराइल से युद्ध करेंगे। अतः इसराइल से लड़ने वाले किसी जाति से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वे स्वर्ग के अनंत राजा से युद्ध कर रहे हैं। यशाया अध्याय 49 पद 26। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा, और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूं। संपूर्ण संसार जान लेगा और निस्संदेह परमेश्वर कहता है कि उस दिन वो रूस की आक्रमणकारी सेना और उसके मित्र राष्ट्रों का नाश करेगा कि पूरा विश्व जान ले कि यहोवा ही प्रभु है। वो पृथ्वी की समस्त जातियों में पवित्र किया जाएगा।